प्यारे विद्यार्थियों, श्री बालाजी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम कक्षा 12 राजनीति विज्ञान में दूसरी इकाई भारत में शासन, जिसमें 2 अध्याय पढ़ लिए थे, आज हम 3रा अध्याय जिसका नाम है न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, कार्य एवं न्यायिक पुनरावलोकन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ध्यानपूर्वक सुने और उनको याद करें। सर्वोच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय वास्तव में विश्व के सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है। 1950 से ही न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका बहुत महत्वपूर्ण है। हर समाज में व्यक्तियों के बीच, समूह के बीच और व्यक्ति समूह तथा सरकार के बीच विवाद उठते हैं। इन सभी विवादों को कानून के शासन के सिद्धांत के आधार पर एक स्वतंत्र संस्था द्वारा हल किया जाना चाहिए। कानून के शासन का भाव क्या है? कानून के शासन का भाव यह होता है कि धनी और गरीब, स्त्री और पुरुष तथा अगड़े और पिछड़े सभी लोगों पर एक समान कानून लागू हो। कानून के शासन का भाव यही होता है कि धनी और गरीब, स्त्री पुरुष और अगड़े पिछड़े सभी लोगों पर एक समान कानून लागू हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि वह कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करें। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है और विवादों को कानून के अनुसार हल करती है। तो न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका क्या होती है, या न्यायपालिका के पूछ ले 2 कार्य लिखिए, तो एक तो कानून के शासन की रक्षा करना और न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है और विवादों को कानून के अनुसार हल करती है, और ये सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही तो न हो जाए। इसके लिए जरूरी है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त हो। न्यायपालिका को स्वतंत्रता कैसे दी जा सकती है, उसे सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है? तो न्यायपालिका को हम किस प्रकार स्वतंत्र रख सकते हैं, कैसे उनको सुरक्षित रखा जा सकता है, इसके बारे में सुने। न्यायाधीशों की नियुक्तियों के मामले में विधायिका को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। न्यायाधीशों की नियुक्तियों के मामले में विधायिका को भारत में सम्मिलित नहीं किया गया है। इसके लिए ये सुनिश्चित किया गया है कि इन नियुक्तियों में दलगत राजनीति की कोई भूमिका नहीं रहे। एक दलगत राजनीति नहीं होनी चाहिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए और न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव या कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। न्यायाधीश के लिए नियुक्त होने के लिए वकालत का अनुभव और कानून का विशेषज्ञ होना भी जरूरी है। उस व्यक्ति के राजनीतिक विचार या निष्ठाएं उसकी नियुक्ति का आधार नहीं बनना चाहिए। न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है। वे सेवानिवृत्त होने तक अपने पद पर बने रहते हैं। केवल अपवाद स्वरूप विशेष परिस्थितियों में ही न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। इसके अलावा उसके कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता। कार्यकाल की सुरक्षा के कारण न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना काम कर पाते हैं। संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। संविधान निर्माताओं का मानना था कि हटाने की प्रक्रिया कठिन हो तो न्यायपालिका के सदस्यों का पद सुरक्षित रहेगा। न्यायाधीशों की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। न्यायाधीशों की नियुक्तियों के संबंध में वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास होती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास होती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित किए जाएंगे। इसी में से राष्ट्रपति उन्हें नियुक्ति देगा, नियुक्तियां करेगा। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्तियों की सिफारिश के संबंध में सामूहिकता का सिद्धांत दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अन्य चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा और इसी में से राष्ट्रपति नियुक्तियां करेगा। इसे कॉलेजियम व्यवस्था कहते हैं। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति किस व्यवस्था के जरिए की जाती है? कॉलेजियम व्यवस्था के जरिए की जा सकती है। कॉलेजियम व्यवस्था में एक तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है और चार वरिष्ठतम न्यायाधीश मिलकर के कुछ व्यक्तियों के नाम प्रस्तावित करते हैं। इसी में से राष्ट्रपति उनको नियुक्ति देते हैं, उसे ही कॉलेजियम व्यवस्था कहते हैं। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्तियों के संबंध में सामूहिकता का सिद्धांत स्थापित किया। इसी कारण आजकल नियुक्तियों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायाधीशों के समूह का ज्यादा प्रभाव है। इस तरह न्यायपालिका की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय और मंत्रिपरिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। न्यायाधीशों को पद से हटाना। संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत जटिल प्रक्रिया निर्धारित की गई है। न्यायाधीशों को कदाचार साबित होने अथवा अयोग्यता की दशा में ही पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों के विरुद्ध आरोपों पर संसद के एक विशेष बहुमत की स्वीकृति आवश्यक होती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। वही उनको हटाने की शक्ति विधायिका के पास है। न्यायपालिका की संरचना। भारतीय संविधान एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। इसका अर्थ यह है कि विश्व के अन्य संघीय देशों के विपरीत भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं है। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है। जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर जिला न्यायालय और फिर अधीनस्थ न्यायालय हैं। नीचे के न्यायालय अपने ऊपर के न्यायालयों की देखरेख में काम करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। सबसे ऊपरी न्यायालय इस कारण सर्वोच्च न्यायालय के फैसले सभी अदालतों, सभी न्यायालयों को मान्य होते हैं। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है। तीसरा कार्य, सर्वोच्च न्यायालय किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के पास ये भी अधिकार है, किसी भी अदालत का मुकदमा वह अपने पास मंगवा सकता है। चौथा कार्य सर्वोच्च न्यायालय का, यह किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का ये भी अधिकार है, ये भी कर्तव्य है, ये किसी एक न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय के क्या क्या अधिकार हैं? पहला अधिकार हमने पढ़ा, इनके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं। ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है। ये किसी भी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। ये एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है। फिर दूसरा आता है सर्वोच्च न्यायालय से निम्न स्तर पर उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई करता। उच्च न्यायालय निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई करता है। जिला न्यायालय की अपील की सुनवाई करता है। मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता। उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए, लागू करने के लिए रिट जारी कर सकता है। राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है। उच्च न्यायालय उस राज्य के क्षेत्राधिकार में जो भी मुकदमे आ रहे हैं उनका निपटारा कर सकता है। अपने अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करता है। अपने अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करता है। जो भी अपने अधीन अदालतें हैं उनका, उन पर भी पर्यवेक्षण व नियंत्रण रखता है। जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करता है। जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई कौन करता है? जिला न्यायालय। निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई करता है। गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला देती है। जिला न्यायालय गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला देता है। फिर अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालयों में फौजदारी और दीवानी किस्म के मुकदमों पर विचार करता है। अधीनस्थ न्यायालय फौजदारी और दीवानी किस्म के मुकदमों पर विचार करता है। फौजदारी किस्म की मुकदमे, फौजदारी किस्म के मुकदमों में हत्या, बलात्कार, धोखाधड़ी, मारपीट, डकैती, चोरी, ये सब फौजदारी किस्म के मुकदमों में आते हैं। पूछ लिया जाए दो फौजदारी किस्म के मुकदमे, मुकदमों के नाम लिखिए, तो हत्या, धोखाधड़ी, मारपीट, डकैती, चोरी, दीवानी, दीवानी मुकदमों में क्या आते हैं? संपत्ति का क्रय विक्रय, संपत्ति का क्रय विक्रय, लेन देन, विवाद, किराए का मकान खाली नहीं करना, संपत्ति स्वामित्व, उत्तराधिकार के नियम, ये सभी दीवानी मुकदमों में आते हैं। इस प्रकार न्यायपालिका की संरचना एक पिरामिड की तरह कार्य करती हैं, जिसमें सबसे ऊपरी न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान में भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में। राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ है? हमारी राजस्थान का उच्च न्यायालय हाईकोर्ट, राजस्थान का हाईकोर्ट कहाँ पर है? जोधपुर जिले में, और इसकी एक खंडपीठ है वह जयपुर में है। तो राजस्थान का उच्च न्यायालय पूछ लिया जाए तो जोधपुर, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। तो न्यायपालिका की संरचना में, संरचना एक पिरामिड की तरह है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय से निचले स्तर पर उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय से निचले स्तर पर जिला न्यायालय, और जिले न्यायालय से निचले स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय एक सबसे ऊपरी न्यायालय है। इस प्रकार न्यायपालिका की संरचना एक पिरामिड की तरह है। इसमें जो मुख्य प्रश्न बन रहे हैं वो पर्सन लिखे। कॉलेजियम व्यवस्था किसे कहते हैं? कॉलेजियम व्यवस्था किसे कहते हैं? आंसर लिखें, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अन्य चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा और इसी में से राष्ट्रपति नियुक्तियां करेगा, इसे कॉलेजियम व्यवस्था कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अन्य चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा और इसी में से राष्ट्रपति नियुक्तियां करेगा, इसे कॉलेजियम व्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न लिखें, कानून के शासन का भाव क्या है? कानून के शासन का भाव क्या है? आंसर लिखें, कानून का शासन अमीर गरीब, स्त्री पुरुष तथा अगड़े और पिछड़े सभी लोगों पर एक समान कानून लागू करता है। कानून का शासन धनी गरीब, स्त्री पुरुष तथा अगड़े पिछड़े सभी लोगों पर एक समान कानून लागू करता है, ये कानून के शासन का भाव है। गृह कार्य के लिए प्रश्न लिखें, न्यायपालिका की संरचना को समझाइए। न्यायपालिका की संरचना को समझाइए। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर लिखे अच्छी तरीके से याद कर लें। न्यायपालिका की संरचना एक पिरामिड की तरह है, जिसमें सबसे ऊपरी स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर जिला न्यायालय और सबसे निम्न स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय हैं। कौन कौन से मुकदमों की सुनवाई उच्च न्यायालय करता है, कौन से मुकदमों की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय करता है, कौन से मुकदमों की सुनवाई जिले न्यायालय में होती हैं और किन मुकदमों की सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय में होती हैं, ये न्यायपालिका की संरचना में आएगा। जो अच्छी तरीके से इस क्लास को सुनकर इसका उत्तर लिखें और याद करें, परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी के साथ आज हमारी क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।